सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सवसाहूणं कम्मट्ठजनियवेयण वहि समुत्तिर्णये जिणेन मिऊं वेयण महाहियारं विविहियारं परुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। आज से ये 12वीं पुस्तक, परंतु वेदना खंड ही चल रहा है, चतुर्थ वेदना खंड चल रहा है, उसमें वेयणा भाव विहाणानु योगद्वारम यानी वेदना भाव विधान अनुयोग द्वार अभी प्रारंभ हो रहा है। अभी तक हमने वेदना के कितने अधिकार देखे, याद है? क्योंकि ये चल रहा है ना अपना 11वीं पुस्तक में भी, 10वीं में भी, उसके पहले देखो क्या कहते हैं, ये 7वां अभी शुरू हो जाएगा, वेदना संबंधी 7वां अधिकार। इसके पहले 6 अधिकार हो गए हैं, वेदना नाम हाँ लिखा बार वॉल्यूम 4 सेक्शन 7 खंड 4 भाग 7 चतुर्थ खंड पूरा ही वेदना संबंधी है, यानी कर्मों संबंधी, उसमें ये 7वां चलेगा अधिकार। अधिकार कहो या अनुयोग द्वार कहो, पहला हमने नाम देखा वेदना नाम, फिर वेदना निक्षेप देखा, वेदना नय विभाषणता देखे, फिर वेदना द्रव्य, ये जो 10वीं पुस्तक में वो संख्या भागार प्रक्षेप उसकी बात, योगों की वगैरह बात देखी थी उसमें, फिर वेदना क्षेत्र विधान में अवगाहना के अलग अलग भेद देखे थे। वेदना काल अभी अभी हुआ अपना, कितनी स्थिति का बंध या स्थिति का सतो उसकी अपेक्षा से, और उसके ऊपर चुली का भी देखिए। अब यहाँ वेदना भाव विधान अनुयोग द्वार चलेगा। अब यह हम सूत्रों को प्रारंभ करते हैं। पहला सूत्र, वेयणा भाव विहाणेति तथ इमानी तिन्नी अनुयोग दाराणी नादववाणी भवंती। अब वेदना भाव विधान प्रारंभ होता है, उसमें ये 3 अनुयोग द्वार ज्ञातव्य हैं। कौन से अनुयोग द्वार ज्ञातव्य है वो भी दूसरे सूत्र में कहेंगे। भाव 4 प्रकार का है। अभी भाव पर ये निक्षेप लगाएंगे, नाम स्थापना द्रव्य और भाव, यानी भाव पर भी भाव लगाएंगे। तो कहते भाव 4 प्रकार का है, नाम भाव, स्थापना भाव, द्रव्य भाव, वो करना वो दिख रहा है, और भाव भाव। उनमें भाव यह शब्द नाम भाव है, सद्भाव या असद्भाव स्वरूप से वह यह है। इस प्रकार अभेद से संकल्पित पदार्थ स्थापना भाव कहा जाता है। किसी पदार्थ में यह भाव है ऐसा स्थापना कर देना, सद्भाव और असद्भाव का अर्थ होता है तदाकार अतदाकार। यह हमने पहले देखा था ना स्थापना के भेद, तो उसको सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना भी कहते हैं। यहाँ भाव का प्रकरण चल रहा है। अभी द्रव्य भाव 2 प्रकार का है, यानी जो द्रव्य निक्षेप हम हमेशा लगाते हैं वे 2 प्रकार के, आगम द्रव्य भाव और नो आगम द्रव्य भाव। दूसरे पृष्ठ पर आए हम, उनमें भाव प्रावृत का जानकार, भाव संबंधी जो प्रावृत है उसका जानकार उपयोग रहित जीव आगम द्रव्य भाव कहलाता है। ये हमने बहुत बार अपना हुआ है। नो आगम द्रव्य भाव न्यायक शरीर भावी और तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य भाव के भेद से 3 प्रकार का है। इनमें न्यायक शरीर और भावी नोआगम द्रव्य भाव ज्ञात है, यानी ज्ञायक का शरीर उसको कहेंगे ज्ञायक शरीर, नोआगम द्रव्य भाव, और भावी में वह जीव लेना जो भविष्य में जानने वाला है। तद व्यतिरिक्त नोआगम द्रव्य भाव दो प्रकार का है। तद व्यतिरिक्त इनके अलावा न ज्ञायक यानी जीव भी नहीं, उसका शरीर भी नहीं, इनके अलावा और क्या है, तो कहते हैं कर्म द्रव्य भाव और नो कर्म द्रव्य भाव। द्रव्य शब्द द्रव्य निक्षेप के लिए लगाया है, भाव संबंधी बात चल रही है, और नो कर्म द्रव्य भाव, उनमें ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों की जो अज्ञानादि को उत्पन्न करने रूप शक्ति है वह कर्म द्रव्य भाव कही जाती है। अनेक कर्मों का भाव जो है ना, तो कर्मों का भाव क्या है, जीव का भाव क्या है, जीव का स्वभाव क्या है, ज्ञान। कर्मों का स्वभाव क्या है, उसमें जो फल देने की शक्ति है वो उसका स्वभाव, तो यहाँ कर्म भाव में उसको लेना। तो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों की जो अज्ञानादि को, ज्ञानावरणादि में सभी कर्म लेना और अज्ञानी अज्ञानादि में सभी कर्मों के अपने अपने कार्य लेना, एक नाम से उन्होंने सबको इंक्लूड कर दिया है। आदि लिखती है ना, ज्ञानावरणादि लिखने से आठों कर्म आ गए और अज्ञानादि में अपने अपने कर्मों के फल भी उसमें आ गए। हर एक कर्म का अपना अपना भाव होगा, यह धर्म कर्म द्रव्य भाव कही जाती है। नो कर्म द्रव्य भाव दो प्रकार का है, सचित्त द्रव्य भाव और अचित्त द्रव्य भाव। उनमें केवल ज्ञान व केवल दर्शन आदि सचित्त द्रव्य भाव है। सचित्त ने जीवों के, जीवों के भाव है ना, केवल ज्ञान केवल दर्शन सचित्त द्रव्य भाव हो गया। और अचित्त द्रव्य भाव दो प्रकार का है, अचित्त ने अचेतन में कौन है, मूर्तिक भी है अमूर्तिक भी है, तो उसमें मूर्त द्रव्य भाव और अमूर्त द्रव्य भाव। उनमें वर्ण गंध रस स्पर्श आदि मूर्त द्रव्य भाव है, यानी मूर्त द्रव्यों के भाव है, गुण है, स्वभाव है। अवगाहनादिक अमूर्त द्रव्य भाव है। अवगाहना कौन से द्रव्य का भाव है, अवगाहना मुख्य विशेष गुण किसका कहा जाता है, आकाश का, जीव का है, परंतु ये विशेष गुण की बात चल रही ना, जो सभी द्रव्यों को अवगाहना दे और सबसे बड़ा हो। अब भावाभाव दो प्रकार का है, भाव अवधाना आदि। हाँ अरविंद भाई, धर्म द्रव्य के स्वभाव, अधर्म द्रव्य का स्वभाव, तो उसमें हम गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, परिणमन हेतुत्व, ये आदि में आ गए। अन्य अन्य द्रव्यों के भाव, वो अचित्त द्रव्य भाव कहा उसको। ये भावा भाव लिखा है, मगर भाव भाव होना चाहिए था, भाव अभाव नहीं है, वो भाव भाव है। ऊपर देखेंगे भाव भावो, नहीं नहीं नीचे से एक दो तीन चार पाँच छ सात, सातवीं लाइन है। हाँ भाव, पहले भी ये बात आई थी ना, द्रव्य भाव और भाव भाव, इसी से मुझे लगा ये गलत, भाव करना, भावा भाव का भाव भाव करना, ये भाव निक्षेप लगा रहे हैं ना, भाव शब्द पर भाव निक्षेप लगा रहे हैं, इसलिए वो भाव भाव हुआ। आगम भाव भाव और नो आगम भाव भाव दो प्रकार है ना इसके, जैसे हमने द्रव्य निक्षेप में दो लगाते हैं, आगम द्रव्य और नो आगम द्रव्य, वैसे आगम भाव और नो आगम भाव। इनमें भाव प्रावृत का जानकार उपयोग युक्त जीव आगम भाव भाव कहा जाता है। नो आगम भाव भाव दो प्रकार का है, तीव्र मंद भाव और निर्जरा भाव। शंका, जबकि तीव्रता व मंदता भाव स्वरूप है, तब उन्हें भाव भाव नाम से कहना कैसे उचित कहा जाता है। तीव्रता और मंदता भावों की ही तीव्रता और मंदता होती है, तो उसको अलग से क्यों कहते हैं, नहीं क्योंकि तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, ये तरतम किसको कहते हैं मालूम है, गुड बेटर बेस्ट, वैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव वैसे तीव्रतर एने अधिक और तम एने सर्वोत्कृष्ट तीव्र तीव्रतर तीव्रतम मंद मंदतर और मंदतम आदि गुणों के द्वारा भाव का भी भाव पाया जाता है। भाव ने अभी हमने देखे पुद्गल में कौन से भाव है, स्पर्श रस गंध वर्ण। अभी उसमें हम स्पर्श की बात करेंगे, जो कोई स्निग्ध गुण है उसका, स्निग्ध अंश जो उसका है, तो उसमें भी तीव्र स्निग्ध इटसेल्फ भाव है, परंतु वो स्निग्ध का भाव क्या है तो कहेंगे वो तो अधिक है कि कम है, इस तरह से उसको भाव का भी भाव समझना। निर्जरा को भी भाव भाव रूपता असिद्ध नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्वोत्पत्ति यानी सम्यक्त्व की उत्पत्ति आदिक भाव भावों से उत्पन्न होने वाली निर्जरा के उपचार से भावा भाव फिर हुआ है, भाव भाव चाहिए, भाव भाव स्वरूप होने में कोई विरोध नहीं है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ, जो भाव का भाव जो है अब उससे वो निर्जरा होती है, इसलिए निर्जरा को भी उपचार से भाव भाव कहा। निर्जरा कार्य है, उसका कारण क्या है, भाव, भाव का भाव, तो उसका उपचार निर्जरा में करके निर्जरा को भी भाव भाव रूप कह दिया। यहाँ अभी इतने सारे भेद बताए उन्होंने भाव के, उसमें से कौन सा वाला भाव लेना है, हमने नाम भाव, स्थापना भाव, द्रव्य भाव और भाव भाव देखा, तो उसमें से द्रव्य भाव में से जो हमने नौ अगम द्रव्य भाव में से तद्व्यतिरिक्त वाला भेद देखा था, उसमें भी कर्म भाव देखा था द्रव्य निक्षेप वाले में। तो यहाँ कहते यहाँ कर्म भाव प्रकृत है, क्योंकि कर्म भाव को छोड़कर और दूसरों की वेदना का यहाँ संबंध नहीं है, यानी कर्म भाव की यहाँ चर्चा है, वेदना में कर्म की बात चल रही ना, तो उसका भाव जो है यानी फलदान शक्ति जो है उसकी बात यहाँ चलेगी। तद व्यतिरिक्त में क्या लिया था हम, यही कर्म द्रव्य भाव, उसकी बात अभी जो उन्होंने बताई। कर्म द्रव्य भाव आया नहीं बात, यानी वो तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य भाव में से जो कर्म द्रव्य भाव है उसको यहाँ कर्म भाव कहा। देखो कर्मकांड में भी एक शब्द है भाव कर्म, भाव कर्म का अर्थ क्या होता है, हाँ मोह राग द्वेष है ना, तो वहां लिया है कर्म का जो भाव है, कर्म की उसको कर्म भाव कहा है, भाव कर्म भी कहा है, कर्म का भाव कर्म। तो यहां भी देख रहे कर्म भाव, कर्मों का भाव, हमें लगता है जीव में ही भाव होते हैं, कर्म का भी अपना भाव है ना, प्रत्येक द्रव्य भाव स्वरूप है कि नहीं है, अपने स्वभाव स्वरूप है, तो यहाँ कर्म के भावों की चर्चा चलेगी। नहीं समझे, ये तो सर्वत्र तो जीव के राग द्वेष आते हैं, परंतु यहाँ कर्मों के भावों की चर्चा चलेगी। जैसे पुद्गलों के भाव क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण, तो कर्मों के भाव क्या है, तो कर्म ऐसा हमने नाम दिया ना उसको, तो ये पुद्गलों की विशिष्ट अवस्था है, तो उसका भाव क्या है, तो ये कर्म की जो फलदान शक्ति है उसको कहेंगे वहां पर। हाँ कर्मों का कर्मपना, अपन कर्मपना काहे से है, उसका लक्षण क्या है, हाँ उसके अनुभाग है, उसका जो फल देने की शक्ति, जैसे ज्ञानावरण का भाव अलग है और दर्शनावरण का भाव अलग है, ये बात होती है। वेदना का भाव वेदना भाव, वेदना भाव का विधान अर्थात प्ररूपणा वेदना भाव विधान है। अब ये जो हमने नाम पढ़ा ना वेदना भाव विधान अनुयोग द्वार, तो वो शब्द कैसा तैयार है होता है उसको बताया है। उस भाव विधान में, उस वेदना भाव विधान में ये तीन अनुयोग द्वार जानने योग्य है। अभी कौन से वो तो अभी आगे के सूत्र में बताएंगे, उसके पहले शंका पूछते हैं यहाँ आठ अनुयोग द्वारों की प्ररूपना क्यों नहीं की गई है? उसका समाधान, नहीं क्योंकि शेष पांच अनुयोग द्वार इन्हीं में प्रविष्ट है। जैसे हम अनुयोग द्वारों में क्या क्या बताते हैं, वो तो नाम बताएंगे, फिर द्रव्य, उसका क्षेत्र, काल, भाव, जो कुछ है वो सब बताएंगे। तो यहाँ तो कहते हैं सभी क्यों नहीं, जैसे हम नहीं प्ररूपणा बताएंगे, प्रमाण बताएंगे, उसका उगार, जो कुछ है वो सब बताएंगे। शंका, अभी वेदना भाव विधान का अवतार किस लिए हुआ है? क्योंकि हमने अभी तक क्या देखा, वेदना नाम देखा, वेदना निक्षेप देखा, वेदना नय देखा, वेदना द्रव्य देखा, वेदना काल देखा, छह देखे ना, क्षेत्र भी देखा, वेदना क्षेत्र भी देखा उसके पहले। तो ये भाव विधान का अवतार क्यों हुआ? समाधान, वेदना द्रव्य विधान में जघन्य व उत्कृष्ट आदि के भेद से जिन आठ कर्मों के द्रव्य प्रमाण को जान लिया है। द्रव्य विधान में किसको लिया हमने? द्रव्य को जाना। द्रव्य ने क्या? हाँ, संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो उत्कृष्ट कितने परमाणु ग्रहण करता है, जघन्य कितने ग्रहण करता है, तो वहां क्यों ग्रहण करता है जघन्य उत्कृष्ट, योग के द्वारा वो देखा था हमने। तो योगों की भी चर्चा की थी और परमाणुओं की संख्या की, जघन्य उत्कृष्ट की भी संख्या देखी थी। क्षेत्र विधान में भी जघन्य व उत्कृष्ट आदि के भेदों से जिनका अवगाहना प्रमाण जाना जा चुका है, यानी विधान का ये वेदना का यानी कर्मों का अवगाहना का भी, अवगाहना की बात भी हमने देखी थी। सूक्ष्म निगोद में उसकी जघन्य अवगाहना होगी और जब महामत्स्य में और होते हैं और समुद्घात अवस्था में और बढ़ जाती है, और केवली समुद्घात में तो मैक्सिमम होती है, इस तरह से हमने देखा था। तथा काल विधान में जिनका जघन्य व उत्कृष्ट आदि के भेदों से काल प्रमाण ज्ञात हो चुका है, उत्कृष्ट से लेकर जघन्य तक एक एक समय के भेद से हमने सारे स्थिति बंध के या स्थिति सत्व के अलग अलग स्थान भी देखे थे, वो काल में आ गई बात। उन आठ कर्मों की अज्ञानादि कार्यों की उत्पादक शक्ति, भाव बता रहे ना अभी, तो कर्मों की कौन सी शक्ति? अज्ञानादि, जैसे ज्ञानावरण में अज्ञान उत्पन्न कराने की शक्ति, इस तरह से लेना। अपना अपना भाव अलग अलग होगा हर एक कर्म का। तो कहते हैं आठ कर्मों की अज्ञानादि कार्यों की उत्पादक शक्ति के विकल्प, विकल्प यानी उसके वेरिएशंस, यानी वो उत्पादन शक्ति जो है या फलदान शक्ति हम कहेंगे अभी इसको, तो वो मंद है के तीव्र है के बीच में मध्यम है, उसके जितने वेरिएशंस हो गए अविभाग प्रतिच्छेदों के, हो अभी अविभाग प्रतिच्छेदों में नापेंगे। द्रव्य की बात संख्या में नापी थी, क्षेत्र की बात प्रदेशों में कितने प्रदेशी है वगैरह उसमें मापी थी, काल की तो समयों में मापी थी, अब यहाँ पर भाव जो है वो अविभाग प्रतिच्छेदों में मापेंगे और उसमें कितने कितने वेरिएशन है उसको देखेंगे। तो उत्पादक शक्ति के विकल्पों की प्ररूपणा करने के लिए वेदना भाव विधान का अवतार हुआ है। अब उक्त तीन अनुयोग द्वारों का नाम निर्देश करने के लिए आगे का सूत्र कहा जाता है, पदमीमांसा सामित्तम अप्पा बहुए। पदमीमांसा स्वामित्व और अल्प 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 चाहिए, अल्प हुआ है, अल्प करना उसको, अल्प बहुत्व, यही तीन हमने पहले भी देखे थे, द्रव्य में भी और क्षेत्र में भी देखे थे ये पदमीमांसा स्वामित्व अल्प। सूत्र में निर्दिष्ट पद से जघन्य व उत्कृष्ट आदि पदों का ग्रहण किया गया है। आदि में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य होते, फिर वो हमने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट देखी ना 13 पदों की, तो आदि पदों का ग्रहण किया, क्योंकि अन्य पदों का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए यहाँ अर्थ पद व व्यवस्था पद आदि पदों का ग्रहण नहीं होता, किंतु भेद पद का ही ग्रहण किया जाता है। देखो पद तीन प्रकार के होते हैं ना, अर्थ पद होता है, प्रमाण पद होता है और अभी यहाँ भेद व्यवस्था पद, यानी पद का अर्थ होता है वर्ड शब्द, किसी अर्थ में वो पद है, पद मीमांसा है, भेदों की मीमांसा, भेद के अर्थ में जो पद प्रवृत्त है, जो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट है, उस पदों की चर्चा होगी, अन्य पदों की नहीं। जैसे हम कोई भी वाक्य बोलते तो उसमें पदों से ही वाक्य बनता है, अन्य पदों की यहाँ कोई प्ररूपणा नहीं है। जैसे व्याकरण जो होगा उसमें सर्वनाम कहेंगे, नाम कहेंगे, वो पद होंगे ना, उसके क्रियापद हो जाएंगे। हाँ, व्यवस्था में जो कुछ अन्य चीजें समझाने के लिए जो शब्दों के इस्तेमाल होता है, व्यवस्था पद यानी अभी देखो ना, अर्थपद, प्रमाण पद, अर्थपद वगैरह भी हमने देखे ना, संख्या की अपेक्षा उसको प्रमाण पद कहते हैं, अर्थ जिससे भाषित होता है उसको अर्थपद कहते हैं। जैसे राम ने आम खाया, तीन पद हो गए, तो फिर उसमें कहेंगे वो राम वो करता है, आम वो कर्म है, वो क्रिया है उसकी। इस तरह से अन्य अन्य व्याकरण की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, या कोई हम लौकिक भी कुछ बात करते हैं तो उसमें भी वो पदों के द्वारा उसकी अर्थ भाषित होता है हमको, वो इसमें समझना। तो अन्य पदों की चर्चा नहीं है यहाँ। कौन से पद, ये जघन्य है कि उत्कृष्ट है कि अजघन्य है, ध्रुव है कि अध्रुव है, उसकी उन पदों की बात चलेगी, अन्य पदों की नहीं। यानी जिसके द्वारा उसमें भेद ख्याल में आता है, फलदान शक्ति के अलग अलग भेद जिसके द्वारा ख्याल में आएंगे, उसकी यहाँ चर्चा चलेगी। इसको भेद पद कहते हैं, ये हमने पहले भी भेद देखे थे ना इसके। पदों की मीमांसा अर्थात परीक्षा या गवेषणा का नाम, गवेषणा यानी खोज, खोज, हाँ, उसका नाम पद मीमांसा है। यह प्रथम अधिकार है। घोड़ा व हाथी आदि संबंधी स्वामित्व के भेद से, यद्यपि स्वामित्व बहुत प्रकार का, ये तो पद मीमांसा की बात हुई, अब स्वामित्व बताएंगे। तो स्वामित्व तो किसी भी बारे में हो सकता है, वो ये घोड़े का स्वामी, हाथी का स्वामी है, ये पूरे भारत का स्वामी है, राज्यों का स्वामी है ना। तो अन्य चीज की यहाँ कोई चर्चा नहीं होगी। यद्यपि स्वामित्व बहुत प्रकार का है तो भी यहाँ कर्म भाव के स्वामित्व का ही ग्रहण करना, कर्म भाव यानी अभी जो हमने कर्म की फलदान शक्ति देखी उसका स्वामित्व बताएंगे, क्योंकि और दूसरों का यहाँ अधिकार नहीं है, यह दूसरा अनुयोग द्वार है। जैसे हमने देखा ना, उत्कृष्ट क्षेत्र का स्वामी कौन है, उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाले स्वामी कौन है, इस तरह से यहाँ भी स्वामित्व बताएंगे, ये दूसरा हो गया। अब अल्प बहुत्व भी यद्यपि द्रव्यादिक के भेद से अनेक प्रकार का है तो भी, यानी प्रदेशों की अपेक्षा से अल्प बहुत्व हमने देखा था, काल की अपेक्षा देखा था, अन्य अन्य द्रव्यादिकों की अपेक्षा भी अल्प बहुत्व होता है, परंतु यहाँ प्रकरण के वश कैसे, तो भी यहाँ कर्म भाव के अल्प बहुत्व का ही ग्रहण करना चाहिए। ये जो तीन जो है, पद मीमांसा, स्वामित्व और अल्प बहुत्व, ये कर्मों के भाव संबंधी ही सब होंगे, अन्य कुछ नहीं, क्योंकि दूसरे अल्प बहुत्वों का यहाँ प्रयोजन नहीं है। यह क्षेत्र लंबाई का छोटा है वो नहीं कहेंगे, काल कितने बांधा उसको नहीं कहेंगे, ये कितना अनुभाग है उसकी अपेक्षा से यहाँ बात होगी अल्प बहुत्व। यह तृतीय अनुयोग द्वार है। इस प्रकार इन तीन अनुयोग द्वारों के द्वारा भाव प्ररूपणा करते हैं। पदमीमांसा में ऊपर पढ़ना है, पदमीमांसाये नाना वर्णीय वेयना भावदो किम उक्कस्सा किम अनुक्कस्सा किम जहन्ना किम अजहन्ना। आपको याद होगी हमने वो 13 उसमें से निकाले थे और उसके कॉम्बिनेशंस किए थे। पर 169 हम कॉम्बिनेशन हुए थे ना। देखो, पदमीमांसा में ज्ञानावर्णीय वेदना भाव की अपेक्षा क्या उत्कृष्ट है, क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जघन्य है और क्या अजघन्य है, यह देशामर्शक सूत्र है। उसमें तो 4 ही पद बताए हैं, उसमें से हमने 13 पद जाने थे पहले, यहां भी बताएंगे। हाँ, 13 अतएव वह अन्य 9 पदों का सूचक है, इसलिए स सब पदों का योग 13 होता है, वह इस प्रकार है। अब ये 13 पद बताएंगे। उक्त ज्ञानावरणीय वेदना क्या उत्कृष्ट है, क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जघन्य है, क्या अजघन्य, ये 4 तो सूत्र में बताए हैं। फिर क्या सादी है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव है, क्या ओज है, क्या युग्म है। ये ओज और युग्म का अर्थ याद है क्या? नहीं, ओज यानी विषम, विषम संख्या। ओज का अर्थ होता है विषम संख्या, मूल में यही बात है। और युग्म यानी सम संख्या। क्या ओम है और क्या विशिष्ट है? ओम यानी वो हीन वाली, विशिष्ट यानी अधिक वृद्धि वाली। ओम यानी हानि सहित, विशिष्ट यानी वृद्धि सहित। और क्या नो ओम नो विशिष्ट है, जिसमें हानि वृद्धि दोनों ही नहीं है, इस तरह से। ये ऐसे 13 पद उन्होंने बताए। इसमें सूत्र में 4 बताए हैं, परंतु उसमें ज्ञानावरण पर ये सब लगाएंगे। फिर इस सूत्र में एक एक पद का आश्रय करके 12 भंग स्वरूप अन्य 13 पृच्छा सूत्र गर्भित हैं। वे भी इसी सूत्र से सूचित है। ये तो हमने दोनों ही भागों में, गए भागों में देखा था। ये द्रव्य के प्रमाण में, एक क्षेत्र में, उसमें भी देखा था ना, काल में भी। इस कारण 14 पृच्छा सूत्रों से सब भंगों को जोड़कर 169 समझना चाहिए। उसके कॉम्बिनेशंस करेंगे तो उसको भंग कहते हैं। यहाँ प्रथम सूत्र के अर्थ की प्ररूपणा करने के लिए देशामर्शक रूप से आगे का सूत्र कहते हैं। ये सूत्र भी देशामर्शक रूप से होगा और उसमें से भी अर्थ निकालेंगे। उक्कस्सावा अनुक्कस्सावा जहन्नावा अजहन्नावा। यहाँ ज्ञानावरणीय, सॉरी, नीचे हिंदी में उक्त ज्ञानावरणीय वेदना उत्कृष्ट भी होती है, अनुत्कृष्ट भी होती है, जघन्य भी होती है और अजघन्य भी होती है। यहाँ ज्ञानावरणीय सामान्य की विवक्षा करने पर ओज पद नहीं है, क्योंकि स्पर्धकों, वर्गणाओं और अविभाग प्रतिच्छेदों में कृतयुग्मता ही पाई जाती है। ओह, स्पर्धकों में ओज यानि योग यानि विषम संख्या, और कृतयुग्म पना यानि सम संख्या। हाँ, वो दोनों ही तेजोज और कलियोज दोनों ही ओज आती है। और युग्म में भी दो देखे थे, कृतयुग्म और बादर युग्म, जो दो 4 से भाग देने पर 2 बाकी रहेंगे और बिल्कुल अशेष भाग जाएगा, तो उसको कृतयुग्म कहेंगे। तो ये कृतयुग्मता ही पाई जाती है, कह दिया। शंका, यहां अनादि पद की संभावना कैसे है? ओज है ही नहीं, ऐसे ही कहना चाहते हैं, यानी इवन नंबर में ही हो गए वो। यहाँ अनादि पद की संभावना कैसे है, यानी वो अनादि कैसे हो सकता है? अभी ये भाव पर घटा ना, अभी काल बिल उसको नहीं समझना यहाँ पर। क्योंकि ज्ञानावरणीय भाव सामान्य की विवक्षा होने पर उसके अनादि होने में कोई विरोध नहीं है। भाव सामान्य का अर्थ होता है वर्ष ज्ञानावरणीय में वो कुछ, उसका फलदान शक्ति है तो अनादि से है। वो उत्कृष्ट भाव अनादि से नहीं कहेंगे, जघन्य भाव अनादि से नहीं कहेंगे, परंतु भाव सामान्य की अपेक्षा अनादि कहेंगे। सादी पद का भी यहाँ अभाव नहीं है। आप कहते अनादि है तो हमने मान लिया, तो जो अनादि है वो सादी कैसे हो सकता है? अभी भाव विशेष की अपेक्षा लगाओ, उत्कृष्ट जो है ज्ञानावरण का उसको आदि होगी, क्योंकि अनादि से उत्कृष्ट उत्कृष्ट नहीं चला आ गया है। देखो, सादी पद का भी यहाँ अभाव नहीं है, क्योंकि विशेष की विवक्षा करने पर वह भी पाया जाता है। ध्रुव पद का भी अभाव नहीं है, यानी अलग अलग विवक्षा से वे पद हो सकते हैं। तो ध्रुव पद का अभाव नहीं, क्योंकि सामान्य की मुख्यता होने पर वह भी पाया जाता है। और अध्रुव पद का भी अभाव नहीं है, क्योंकि अनुभाग विशेष की अथवा विशिष्ट एक जीव की विवक्षा करने पर अध्रुवपना देखा जाता है। यानी विशिष्ट अनुभाग ध्रुव नहीं है, जैसे वो सादी है वैसे उसी को अध्रुव भी कह सकते हैं। इस कारण प्रथम सूत्र 12 भंग स्वरूप है ऐसा समझना चाहिए। बारह कैसे, चार तो सूत्रों में बता दिए, चार बताए ना सूत्र में, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अजगण्य जघन्य, ये चार हो गए। हाँ, पांचवा है वो युग्म है, अनादि है, सादी है, ध्रुव है, अध्रुव है, ओम उसकी बात नहीं लिखी यहाँ पर, परंतु वो समझना, ओम नो, ओम विशिष्ट और नोम नो विशिष्ट वो भी हो गया उसमें। अब आगे अब द्वितीय पृच्छा सूत्र का अर्थ कहा जाता है, वह इस प्रकार है। उत्कृष्ट अनुभाग वेदना, अब उत्कृष्ट पर अन्य भाव लगाएंगे बारह बारह। पहले तो उन्होंने बता दिए सामान्य, वो सामान्य से कौन कौन से है कौन से नहीं उसको बता दिया, 13 पदों की चर्चा की। अब एक एक पर अन्य अन्य को लगाएंगे कॉम्बिनेशन। तो उत्कृष्ट पर क्या उत्कृष्ट है वो अनुत्कृष्ट हो सकती है क्या? वो तो नहीं हो सकती, पर उत्कृष्ट है वो अजगण्य हो सकती है क्या? कह सकते उसको, जो जघन्य नहीं वो अजघन्य है। इस तरह से देखो, हम पढ़ेंगे यहाँ पर, उत्कृष्ट अनुभाग वेदना कथनचित अजघन्य है, लिखा ना, क्योंकि अजघन्य पद में वो ध दिख रहा है, अजघन्य करना उसको। अजघन्य पद में जघन्य के आगे से सभी विकल्प देखे जाते हैं। कथनचित सादी है, देखो उसको उत्कृष्ट को अनुत्कृष्ट नहीं कहा, जघन्य नहीं कहा, परंतु अजघन्य कहा। अब कथनचित सादी है, क्योंकि अनुत्कृष्ट अनुभाग में स्थित जीव के उत्कृष्ट अनुभाग उत्पन्न होता है। अब तीसरा पॉइंट, उत्कृष्ट पद के अनादिता नहीं, वो जो है वो लिखना पॉइंट में, तीसरा पॉइंट भी नहीं देना, अनादिता नहीं है, क्योंकि नाना जीवों की विवक्षा होने पर भी उत्कृष्ट पद का अंतर देखा जाता है। यानी कायम उत्कृष्ट है ऐसा नहीं, किसी के बीच में अंतर भी होगा उत्कृष्ट पद में। कथनचित अध्रुव है, क्योंकि उत्पन्न हुए उत्कृष्ट पद का नियम से विनाश देखा जाता है। उत्कृष्ट पद विनो जो हुआ है वो कायम उत्कृष्ट नहीं रहता है, इसलिए उसका विनाश होता है, इसलिए उसको अध्रुव कहा। उत्कृष्ट पद के ध्रुवपना नहीं है, क्योंकि नाना जीवों की विवक्षा होने पर भी उत्कृष्ट पद का विनाश देखा जाता है। अब कथनचित युग्म है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग स्वरूप स्पर्धकों वर्गणाओं और अविभाग प्रतिच्छेदों में कृतयुग्म संख्या ही पाई जाती है। पहले उन्होंने सामान्य की विवक्षा करने पर भी कृतयुग्म देखा था, अभी उत्कृष्ट में भी बताया। कथनचित नोम नो विशिष्ट है, क्योंकि एक विकल्प स्वरूप उत्कृष्ट अनुभाग में वृद्धि व हानि का अभाव है। जो उत्कृष्ट है वो एक ही होगा ना, सर्वोत्कृष्ट है उसमें तो कोई वेरिएशन है नहीं। जैसे मध्यम हो गए जिसको हम अनुत्कृष्ट कहते, तो अनुत्कृष्ट से बढ़ेगा तो भी अनुत्कृष्ट रहेगा, अनुत्कृष्ट से घटेगा तो भी अनुत्कृष्ट रहेगा, परंतु उत्कृष्ट तो बढ़ नहीं सकता है क्योंकि वो मैक्सिमम है, और वो घट नहीं सकता क्योंकि घटेगा तो अनुत्कृष्ट कहेंगे। इसलिए उत्कृष्ट है तो उत्कृष्ट ही है, इसलिए उसमें ओम भी नहीं होगा, विशिष्ट भी नहीं होगा, परंतु नोम नो विशिष्ट है क्योंकि वही उतना का उतना रहा। क्योंकि एक विकल्प स्वरूप उत्कृष्ट अनुभाग में वृद्धि व हानि का अभाव है। इस प्रकार उत्कृष्ट पद पांच विकल्प स्वरूप है। ये तो ख्याल में आएगा क्योंकि दो तीन बार ये अपना विषय हो चुका है इससे पहले, परंतु यहाँ अपने को ये समझना, ये भाव अपेक्षा बात चल रही है, उसकी अपेक्षा सोचना है। तृतीय पृच्छा सूत्र का अर्थ कहते हैं, वह इस प्रकार है। ज्ञानावरणीय की अनुत्कृष्ट वेदना, अभी अनुत्कृष्ट पर सब घटा रहे, पहले उत्कृष्ट पर घटाया था, तो क्या अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट हो सकती है? नीचे की अपेक्षा उत्कृष्ट कहेंगे उसको, और उत्कृष्ट अपेक्षा जघन्य भी कहेंगे। हाँ, अभी देखेंगे। ज्ञानावरणी की अनुत्कृष्ट वेदना कथनचित जघन्य है, क्योंकि उत्कृष्ट से नीचे उसको जघन्य कहेंगे हम, क्योंकि उत्कृष्ट से नीचे के अनुत्कृष्ट संज्ञा वाले सब विकल्पों में जघन्य पद का भी प्रवेश देखा जाता है। कथनचित अजघन्य है क्योंकि जघन्य के ऊपर से ऊपर के अजघन्य संज्ञा वाले स के ऊपर बिंदी लगाना समस्त विकल्पों में अनुत्कृष्ट पद का भी प्रवेश देखा जाता है। कथनचित वो थ पर भी बिंदी लगाऊं, यानी जो अनुत्कृष्ट है वो जघन्य भी है अजघन्य भी है, ये दो लिए ना उसके। अब वो कथनचित सादी है क्योंकि अनुत्कृष्ट पद विशेष की अपेक्षा उसके सादिता देखी जाती है। पहले नहीं था अनुत्कृष्ट, अभी बना तो उसको सादी कहेंगे। कथनचित अनादि है क्योंकि अनुत्कृष्ट सामान्य की विवक्षा होने पर सादिता नहीं पाई जाती है, सामान्य से वो अनुत्कृष्ट रूप से है तो अनादि कह सकते उसको। कथनचित ध्रुव है क्यों, कोई कोई अनुत्कृष्ट में पड़े रहेंगे कोई जीव, उसको ध्रुव कहेंगे। अनुत्कृष्ट के तो बहुत सारे विकल्प हो गए ना उसमें, अनुत्कृष्ट कोई एक विकल्प नहीं है, उसमें वेरिएशन होगा तो भी वे अनुत्कृष्ट रूप से रहेगा, इसकी बात चल रही है। कथनचित ध्रुव है क्योंकि अनुत्कृष्ट सामान्य की विवक्षा होने पर विनाश नहीं देखा जाता। फिर कथनचित अध्रुव है क्योंकि अनुत्कृष्ट पद विशेष की विवक्षा, अनुत्कृष्टों में ही अलग अलग पद है ना, वेरिएशंस जो है, तो विशेष विशिष्ट अनुभाग की अपेक्षा बात करेंगे तो उसमें वो अध्रुव भी है। कहते पद विशेष, फिर पढ़ती हूँ, कथनचित अध्रुव है क्योंकि अनुत्कृष्ट पद विशेष की विवक्षा होने पर सब अनुत्कृष्ट पद विशेषों का विनाश देखा जाता है। कथनचित युग्म है क्योंकि सब अनुत्कृष्ट विशेषों में रहने वाले अनुभाग स्पर्धकों वर्गणाओं और अविभाग प्रतिच्छेदों में कृतयुग्म संख्या पाई जाती है। कथनचित ओम है क्योंकि कांडक घात से अनुत्कृष्ट पद विशेष की हानि देखी जाती है। ये अनुभाग कांडक घात समझना यहां भी, तो उसकी हानि देखी जाती है फिर भी वो अनुत्कृष्ट ही रहता है। कथनचित विशिष्ट है क्योंकि बंध से अनुभाग की वृद्धि देखी जाती है। कथनचित नोम नो विशिष्ट है क्योंकि कहीं पर अनुत्कृष्ट पद विशेष की वृद्धि व हानि नहीं पाई जाती। इस प्रकार अनुत्कृष्ट पद 10 भेद रूप है। अब चतुर्थ पृच्छा सूत्र, उसकी प्ररूपणा करते हुए इस प्रकार है। जघन्य ज्ञानावरणी वेदना। अब ये घटा रहे हैं जघन्य पर, पहले उत्कृष्ट फिर अनुत्कृष्ट दोनों देखे, अभी जघन्य पर घटा रहे। वो कथनचित अनुत्कृष्ट है, क्योंकि जो उत्कृष्ट है उसको हम अनुत्कृष्ट कह सकते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट से नीचे के अनुत्कृष्ट संज्ञा वाले विकल्प में जघन्य पद की भी संभावना है। कथनचित सादी है, क्योंकि अजघन्य पद से जघन्य पद की उत्पत्ति देखी जाती है। अनादिता नहीं है, अनुत्कृष्ट में तो अनादिता बताई थी, अनादिते अनादि से ही अनुत्कृष्ट पद में रहने वाले जीव देखे थे, पर यहाँ अजघन्य में नहीं देखा, सॉरी जघन्य में नहीं कहा उन्होंने, यानी हमेशा जघन्य पद से रहने वाले कोई नहीं होंगे। कथनचित अध्रुव है, क्योंकि अजघन्य पद से जघन्य पद उत्पन्न होता है। जघन्य पद के ध्रुवता नहीं है, क्योंकि जघन्य पद में ही सदा जीवों का अवस्थान नहीं पाया जाता। कथनचित युग्म है, क्योंकि जघन्य अनुभाग संबंधी स्पर्धकों वर्गणा और अविभाग प्रतिच्छेदों की कृतयुग्म संख्याएं पाई जाती है। वो उन्होंने सामान्य में भी बताया, हर एक में बताया। ओज पद नहीं है। कथनचित नोम नो विशिष्ट है, क्योंकि वृद्धि व हानि के होने पर जघन्यपना नहीं रहता। जैसे उत्कृष्ट में हमने देखा था ओम और विशिष्ट नहीं है, नोम नो विशिष्ट है, वैसे यहां पर भी समझना। इस प्रकार जघन्य पद पांच भेद स्वरूप है। हाँ, उत्कृष्ट भी पांच पद का था, जघन्य भी पांच पद का है। अब पांचवे सूत्र का अर्थ कहते हैं, वह इस प्रकार है। ज्ञानावरणीय की अजघन्य वेदना। अब जो अजघन्य है वो जघन्य की अपेक्षा उत्कृष्ट कह सकते हैं, तो कथनचित उत्कृष्ट है और कथनचित अनुत्कृष्ट है, क्योंकि उसमें ये दोनों पद पाए जाते हैं। कथनचित सादी है, क्योंकि अजघन्य पद विशेष की अपेक्षा सादिता देखी जाती है, यानी अजघन्य और अनुत्कृष्ट पद सादी हो सकते हैं दोनों। कथनचित अनादि है, क्योंकि अजघन्य पद सामान्य की अपेक्षा आदि का भाव, आदि का अभाव है। अभाव है, आदि नहीं है तो कथनचित अनादि क्यों कहा? चौथा पर अनादि भावो नथी, अनादि अनादि भावो नथी, नहीं ये नीचे के पंचम सूत्र में ऊपर गई देखने को। सिया अनादिया अजहन्य पद सामान्यम पड़ुच्च आदि अभावादो। अच्छा, आदि का अभाव, ओ अनादि है, मैं आदि आदि समझ रही हूँ। हाँ हाँ, अनादि लिखा है ना, कथनचित अनादि है, मैंने आदि पर घटाया, इसलिए मेरा कंफ्यूजन है, इसलिए आदि का अभाव है, बराबर है। हाँ, पद सामान्य लिया ना उन्होंने। कथनचित ध्रुव है, क्योंकि अजघन्य पद सामान्य का तीनों ही कालों में विनाश नहीं होता। कथनचित अध्रुव है, क्योंकि अजघन्य पद विशेष की अपेक्षा उसका विनाश देखा जाता है। कथनचित युग्म है, क्योंकि अजघन्य अनुभाग के स्पर्धकों वर्गणा और अविभाग प्रतिच्छेदों की कृतयुग्म संख्या ही, देखो हरेक में आई है ये बात, पाई जाती है। कथनचित ओम है, क्योंकि हानि होने पर भी अजघनता देखी जाती है। कथनचित विशिष्ट है, क्योंकि वृद्धि के होने पर भी अजघन्यता देखी जाती है। कथनचित नोम नो विशिष्ट है, क्योंकि वृद्धि व हानि के बिना अजघन्य अनुभाग का अवस्थान देखा जाता है। इस प्रकार अजघन्य पद 10 भेद स्वरूप है। उत्कृष्ट अजघन्य के 5-5 देखे और अनुत्कृष्ट अजघन्य के 10-10 देखे। अब छठे पृच्छा सूत्र का आश्रय करके अर्थ प्ररूपणा की जाती है, वह इस प्रकार है। ज्ञानावरणीय की सादी वेदना, सादी वेदना क्या उत्कृष्ट हो सकेगी, क्या अनुत्कृष्ट हो सकेगी, ऐसा लगाएंगे तो सादी वेदना, सादी यानी जिसको भी आदि है तो उत्कृष्ट हो सकेगी, अनादि की तो नहीं हो सकेगी पर सादी की हो सकती है। तो कथनचित उत्कृष्ट, कथनचित अनुत्कृष्ट, कथनचित उचित करना। कथनचित जघन्य और कथनचित अजघन्य, कहीं पर सामान्य की अपेक्षा लगाना और कहीं पर पद विशेष की अपेक्षा, तो चारों ही घटित होते हैं। कथनचित अनादि है, सादी जो है, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा सादी स्वरूप से भी आदि भाव नहीं पाया जाता है। कथनचित ध्रुव है, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा सादी स्वरूप से भी आदि भाव नहीं पाया जाता। कथनचित दो बार ध्रुव क्यों लिखा, अध्रुव चाहिए यहां पर, सिया धुआ सिया अधुआ नहीं, ये वाक्य ही डबल हुआ। सादिता के प्राप्त अनुभाग का विनाश जाता है, सादी भाव, ये वाक्य ही डबल हुआ है, नहीं ये वाक्य डबल हुआ है। एक मिनट है, ऊपर पढ़ेंगे, ऊपर क्या लिखा, सिया अना दिया बराबर, उसके बाद सिया दुआ, नाना जीवे पड़ुच्च सव कालेसु सादित्य दंसना दो, ये ऊपर का कुछ गड़बड़ है वाक्य, दूसरा वाक्य बराबर है। ये जो नाना जीवों की अपेक्षा सादी स्वरूप से भी आदि भाव नहीं पाया जाता, ये अनादि का वाक्य यहाँ आ गया है, ऊपर के वाक्य, समझ में आया। देखो उद्या ऊपर जो है ना, अनादिया के बाद सिया धुआ कहा था, चौथी लाइन के प्रारंभ में धुआ आया ना शब्द, तो उसके आगे उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, नाना जीवे पड़ुच्च सव कालेसु सादित्य दंसनादो, ये अगले लाइन में ये वाक्य आया है। यहाँ कथनचित ध्रुव है करके अनादि का एक्सप्लेनेशन उसके साथ जुड़ गया है, तो ये वाक्य यहाँ से निकालना है। लाइन नंबर 4 में जो कथनचित ध्रुव है वहां से ही पूरा निकाल डालो, और नीचे का कथनचित ध्रुव है उसके पहले तक सब काटना। ये दो वाक्यों का गलत जुड़कर यह एक एक्स्ट्रा वाक्य हुआ है। अब फिर सही वाक्य पढ़ रही हूं मैं। पहले अनादि का सही था, बीच में जो मैंने पढ़ा था वो तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ प्रिंटिंग में वो डबल हो गया। अभी कथनचित ध्रुव है, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा करके सब काल में उसकी सादिता देखी जाती है। ये जो सादी वाले जो है वो अन्य अन्य जीवों की अपेक्षा हमेशा होगी। 7 नंबर, कथनचित अध्रुव है, क्योंकि साधिता को प्राप्त अनुभाग का विशेष विनाश देखा जाता है, यानी विशिष्ट अनुभाग का विनाश देखा जाता है, इसलिए उसको अध्रुव भी कहा। कथनचित युग्म है क्योंकि तीनों ही कालों में अनुभाग के स्पर्धकों वर्गणा और अविभाग प्रतिच्छेदों में कृतयुग्मता ही देखी जाती है। कथनचित ओम है क्योंकि हानि के होने पर भी साधिता पाई जाती है। कथनचित विशिष्ट है क्योंकि वृद्धि के होने पर भी साधिता पाई जाती है। कथनचित वह नोम नो विशिष्ट है क्योंकि वृद्धि व हानि के बिना भी उसका अवस्थान देखा जाता है। इस प्रकार साधिपद 11 भेद रूप है। अब सातवें पृच्छा सूत्र की अपेक्षा के अर्थ करके अर्थ की प्ररूपना की जाती है, वह इस प्रकार है। अब अनादि पर घटाएंगे। अनादि ज्ञानावरण वेदना कथनचित उत्कृष्ट है। अनादि की कही ना, तो जघन्य की अपेक्षा उसको उत्कृष्ट कह सकते हैं इस तरह। कथनचित अनुत्कृष्ट है, कथनचित जघन्य है और कथनचित अजघन्य है। कथनचित सादी है, यह अनादि की वो कथनचित सादी है क्योंकि ज्ञानावरणी के अनुभाग विशेष का आश्रय करके सादिता देखी जाती है। अनादि तो अपेक्षा क्यों कहती, सामान्य की अपेक्षा, वो अनादि से है, इतना ही कहा था। विशिष्ट अनुभाग सादी है इसलिए उसको कथनचित सादी भी कहा। कथनचित ध्रुव है क्योंकि अनुभाग सामान्य का कभी विनाश नहीं होता। कथनचित अध्रुव है क्योंकि अनुभाग विशेष की अपेक्षा उसका विनाश देखा जाता है। कथनचित युग्म है, ये तो हर एक में लगाए थे ना। कथनचित ओम है, कथनचित विशिष्ट है और कथनचित नोम नो विशिष्ट है। इस प्रकार अनादि पद 11 भेद स्वरूप है। अब आठवें पृच्छा सूत्र की सूत्र का आश्रय करके अर्थ प्ररूपना करते हैं, वह इस प्रकार है। ध्रुव ज्ञानावरणीय भाव वेदना, यानी ध्रुव वेदना जिसको हम कहेंगे, कथनचित उत्कृष्ट है, कथनचित अनुत्कृष्ट है, कथनचित उत्त बराबर करना फिर, कथनचित जघन्य है और कथनचित अजघन्य है, फिर कथनचित सादी है, कथनचित अनादि है, कथनचित अध्रुव है और कथनचित युग्म है। युग्म में तो सब लगाए। कथनचित ओम है, कथनचित विशिष्ट है और कथनचित नोम नो विशिष्ट है। इस प्रकार ध्रुव पद 11 प्रकार का है। मिला आपको? अब नौवा पृच्छा सूत्र कहेंगे। अब नौवे पृच्छा सूत्र का आश्रय कर अर्थ प्ररूपना करते हुए इस प्रकार है। अध्रुव ज्ञानावरणीय वेदना, ये अध्रुव पर घटा रहे भी सभी, तो कहते कथनचित उत्कृष्ट है, कथनचित अनुत्कृष्ट है, कथनचित जघन्य है और कथनचित अजघन्य है, कथनचित सादी है, कथनचित व अनादि है क्योंकि नाना जीवों में अनादि स्वरूप से अध्रुवता पाई जाती है। कथनचित ध्रुव है क्योंकि विशेष की विवक्षा न होने से अध्रुव अनुभाग की सामान्य रूप से ध्रुवता देखी जाती है। कथनचित युग्म है, कथनचित ओम है, कथनचित विशिष्ट है और कथनचित नोम न विशिष्ट है। इस प्रकार अध्रुव पद 11 विकल्प रूप है। ये दसवें पृच्छ का आश्रय कर अर्थ प्ररूपना करते हैं, वह इस प्रकार। युग्म ज्ञानावरणीय भाव वेदना। अब जो युग्म है उसमें सभी प्रकार हमने देखे थे, हाँ, क्योंकि सभी ज्ञानावरण वो युग्म ही होते हैं ऐसा हमने देखा था। तो युग्म पर घटारे भी कथनचित उत्कृष्ट है, वो युग्म है वो क्या नहीं होगा, ओज नहीं होगा, क्योंकि वो जो सम संख्या वो विषम नहीं होगी ना। युग्म ज्ञानावरणीय भाव वेदना कथनचित उत्कृष्ट है, कथनचित अनुत्कृष्ट है, कथनचित जघन्य है और कथनचित अजघन्य है, चार हो गए ना। कथनचित सादी है, कथनचित अनादि है, कथनचित ध्रुव है, कथनचित अध्रुव है, कथनचित ओम है, कथनचित विशिष्ट है, कथनचित नोम नो विशिष्ट है। इस प्रकार युग्म पद 11 विकल्प रूप है, ओज नहीं है उसमें, हाँ, और युग्म स्वयं युग्म है। 13 हम देखते हैं ना, युग्म पर अन्य 12 घटाने थे। ग्यारहवे पुच्छा सूत्र का अर्थ कहते हैं नहीं, क्योंकि अनुमाग में ओज संख्या संभव नहीं है, ख्याल ना, ओज होता ही नहीं तो ओज पर क्या घटाएंगे। बारहवें पृच्छा सूत्र का अर्थ कहते हैं, यानी इसमें कोई भंग होगी नहीं, वो तो होते ही नहीं है इसमें कुछ। 12वां नंबर का वही इस प्रकार है। अभी ओम ज्ञानावरणी के ऊपर सब घटाएंगे। ओम ज्ञानावरणीय भाव वेदना, ओम यानी जो हीनता को प्राप्त होती है उसको ओम कहे। तो कहते कथनचित अनुत्कृष्ट है, कथनचित अजघन्य है, जो उत्कृष्ट है वो घटेगी तो उसको उत्कृष्ट नहीं कहेंगे, जघन्य वो घट नहीं सकती। कथनचित सादी है और कथनचित अनादि है, कथनचित ध्रुव है, कथनचित अध्रुव है और कथनचित युग्म है, सभी तो युग्म है ही, हा? इस प्रकार ओम पद 7 विकल्प रूप है। अब क्या हुआ, 13वें पृच्छा सूत्र का अर्थ कहते हुए इस प्रकार है, विशिष्ट ज्ञानावरणीय भाव वेदना कथनचित अनुत्कृष्ट है, कथनचित अजघन्य। विशिष्ट है अभी वृद्धि वाली, वो जघन्य और उत्कृष्ट दोनों छोड़ना उसमें से। कथनचित सादी है, कथनचित अनादि है, कथनचित ध्रुव है, कथनचित अध्रुव है, कथनचित युग्म है। इस प्रकार विशिष्ट पद 7 विकल्प रूप है, जो विशेष है यानी विशिष्ट है उसको ओम नहीं कहेंगे, नोम नो विशिष्ट नहीं कहेंगे, नोम नो विशिष्ट यानी वृद्धि हानि रहित, जो वृद्धि वाला है उसको हानि वाला या वृद्धि हानि रहित वाला ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए वो उसमें से बाद हो गए। अब 14वें पृच्छा सूत्र का अर्थ कहते हैं वह इस प्रकार है, नोम नो विशिष्ट पर घटाएंगे। तो नोम नो विशिष्ट ज्ञानावरणीय भाव वेदना कथनचित उत्कृष्ट है, कथनचित अनुत्कृष्ट है, कथनचित जघन्य है, कथनचित अजघन्य है। नोम नो विशिष्ट अर्थ का होता है कि उतना ही उतने अनुभाग रहा कुछ समयों तक, तो हम उसको नोम नो विशिष्ट वाला कहेंगे। कथनचित सादी है, कथनचित अनादि है, कथनचित ध्रुव है और कथनचित अध्रुव है और कथनचित युग्म है। इस प्रकार नोम नो विशिष्ट पद 9 विकल्प रूप है। अब सब सूत्रों के भंगों के अंकों की संदृष्टि हमने देखे थे ना, किसके कितने विकल्प है वो देखे थे। तो पहले 12 देखे, फिर 5, 10, 5, 10, फिर 11, 11, 11, 11, 11, ये जो हमने ओज वाला है वो 0 देखा था, उसके बाद 7, 7 और 9 वही गाथा के द्वारा बता रहे हैं। देखो बारसपण दस पंचेकारसय सत्त सत्तणव दुविहरयगणलीना पुच्छा सुतंक संदिठी 12, 5, 10, 5, 10, 5 स्थानों में 11 पंचे एक का रस लिखा ना, ये 5 जगह 11 फिर 7, 7 और 9 इस प्रकार दोनों नयों की अपेक्षा दुविह नय गहन लीना अपेक्षा यह पृच्छा सूत्रों के अंकों की संदृष्टि है। अब विशेषार्थ कहते हैं, वो पा दिख रहा है शा करना विशेषार्थ। वेदना भाव विधान का देखो, ये अपना प्रकरण है भाव विधान। अभी तक हमने काल की अपेक्षा बात देखी थी। भाव का अर्थ होता है कर्मों का भाव क्या है, कि कर्मों की फलदान शक्ति वो उसका भाव है। कर्मों के द्रव्य में संख्या देखी थी, कर्मों के क्षेत्र में जीवों की अवगाहना देखे थे, कर्मों के काल में वो कितने लंबी स्थिति वाला कर्म है उसको देखा था, और कर्मों के भाव का प्रकरण अभी चलेगा ये पूरा। तो उसमें अनुभाग शक्ति अविभाग प्रतिच्छेदों की बात होगी। तो वेदना भाव विधान का यहाँ मुख्यतः 3 अधिकारों के द्वारा कथन किया गया है। अभी जो हमने पढ़ा अभी तक उसी को यहाँ फिर दोबारा विशेषार्थ में सरल शब्दों में समझाते हैं। वे 3 अनुयोग द्वार ये हैं, पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्प बहुत्व। उत्कृष्ट आदि पदों के द्वारा वेदना भाव विधान के विचार का नाम पदमीमांसा है। वो उसके संबंधी जो विचार है उसका नाम पदमीमांसा है। यहाँ सूत्र में उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य इन 4 पदों का ही निर्देश किया है। सूत्र में तो 4 ही पद बताए हैं, किंतु वीरसेन स्वामी ने इनसे सूचित होने वाले 9 पद और गिनाए हैं। एक्स्ट्रा 9 हो गए, यानी 13 हो गए, है ना? ये कुल 13 पद हैं। उनमें भी इनमें से एक एक पद के आश्रय से शेष पदों का विचार करने पर कुल 169 पद होते हैं। यहाँ ज्ञानावरणीय भाव वेदना का विचार प्रस्तुत है। इस अपेक्षा से कुल संयोगी पद कितने होते हैं इसका कोष्टक आगे देते हैं। अभी जो हमने सबकर देखे थे, घटाए थे ना अभी, तो यही यहाँ तो पहले में ये सभी नाम लिखे हैं। वर्टिकली देखना, फिर उत्कृष्ट पद में कौन कौन से घटित होते हैं उसको देखना। इस तरह से आड़ा देखना, उत्कृष्ट पद पर कितने घटित होते हैं। हमने कितने देखे थे, 5 पद। तो देखो ये लेफ्ट साइड में जो उत्कृष्ट लिखा है उस पर अभी ऊपर के कॉलम में से कौन कौन सा घटित होता है, जो नहीं घटित होता है वहां तो क्रॉस कर दिया है, और जो घटित होता है उसके लिए डिटो लिखा। तो उत्कृष्ट है वो अजगण्य हो सकता है, सादी हो सकता है, अध्रुव हो सकता है, युग्म हो सकता है, और नोम हो सकता है। तो इस तरह से उसमें 5 पद है, जो नहीं है उसके लिए क्रॉस किया। देखो अनुत्कृष्ट में कितने, जहाँ डिक्टो है ना उसको ही लेना है खाली। हाँ क्या, हाँ उत्कृष्ट माँ नहीं लिखा है, क्योंकि उत्कृष्ट है वो उत्कृष्ट ही है। उत्कृष्ट पर अन्य 12 घटित करने, अच्छा सवाल है आपका। देखो अनुत्कृष्ट में भी अनुत्कृष्ट के नीचे कुछ नहीं लिखा है, बराबर है ना, जो जो पद है उसको वहां से छोड़ दिया है। ये नहीं लिखने वाली लाइन पूरी ऊपर से नीचे तक ऐसे आप क्रॉस में लिख दे सकते हैं, ऐसा क्रॉस है उसका। हाँ तिरछे लाइन में अपना अपना पद नहीं लिखा है। ये अभी हमने पढ़ा ना उसी को ये टेबल द्वारा समझाया, ये तो बहुत आसान है। अभी देखो हमने कौन से देखे थे, 12 तो सब ऊपर जो है वो 12 लगाए, यानी सभी कितने होते हैं टोटल वो 12 होते हैं। तो ये हमने उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जगन्य अजगन्य सादे अनादि ध्रुव ध्रुव ओ युग्म ओम विशिष्ट अनोम विशिष्ट ये सब देखे इसमें। ये 13 पद है, मूल में 13 पद है और फिर एक एक पर 12 घटाए, इसलिए सूत्र वैसे तैयार किए उन्होंने। तो ओज किसी में भी नहीं है तो सामान्य में 12 घटित किए, फिर उत्कृष्ट पर अनुत्कृष्ट पर अलग अलग घटित किए जो अभी हमने संख्या पढ़ी थी। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ ओज पद क्यों संभव नहीं है इस बात का विचार टीका में किया ही है, तथा शेष पद प्रत्येक और संयोगी कैसे घटित होते हैं यह बात भी टीका में विस्तार से बतलाई है। ये तो यही ऐसी पदों की प्ररूपण हमने पहले भी काल संबंधी और द्रव्य संबंधी भी देखी थी, वहां यथा योग्य जो था उसको वहीं से देखा था। एवं सत्तन्नम कम्माणम, इसी प्रकार शेष 7 कर्मों के विषय में पद प्ररूपणा करनी चाहिए। जिस प्रकार ज्ञानावरणीय के पदों की प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार शेष 7 कर्मों के पदों की प्ररूपणा करनी चाहिए। इस प्रकार ओज अधिकार गर्भित पदमीमांसा नामक अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। अभी स्वामित्व की बात करेंगे। क्या हुआ? अभी स्वामित्व, पहले पदमीमांसा का हो गया, स्वामित्व और अल्पभूतव बताएंगे, अब स्वामित्व की बात होगी। सामित्तम द्विहम जहन्न पदे उक्कस्स पदे, ये अनुभाग की अपेक्षा स्वामित्व बताएंगे अभी। स्वामित्व 2 प्रकार का है, जघन्य पद विषयक और उत्कृष्ट पद विषयक। यहां पर पद शब्द का अर्थ स्थान समझना चाहिए। ये पद शब्द आता है ना, स्थान अर्थ में आता है, गच्छ के अर्थ में आता है। अभी जो पहले पदमीमांसा कहा वहां तो शब्दों के, ये भेदों के जो अलग अलग नाम थे उसके अर्थ में था। अब जो पद शब्द यहाँ लिखा है वो स्थान के अर्थ में आया। एक स्वामित्व जघन्य पद में होता है और दूसरा स्वामित्व उत्कृष्ट पद में होता है। इस तरह स्वामित्व 2 प्रकार का होता है। यहाँ 2 प्रकार के स्वामित्वों की चर्चा करेंगे, जघन्य वाले के और उत्कृष्ट वाले के। वो तो होगी ना, उसके इन बिटवीन सभी विकल्प हो गए। जब हम कहते ना वो तो टॉप मोस्ट कौन आया, उसका नाम लेंगे ना। अभी यहाँ तो नीचे में ही नीचे किसको अनुभाग कम से कम है उसकी भी चर्चा करेंगे। हाँ, ये आपको पता होते उनको। हाँ, शंका अजघन्य और अनुत्कृष्ट पद विषयक स्वामित्व के साथ स्वामित्व 4 प्रकार का क्यों नहीं कहा? समाधान, नहीं, क्योंकि इन्हीं दोनों में उनका अंतर्भाव हो जाता है। यथा उत्कृष्ट स्वामित्व 2 प्रकार का है, ओग उत्कृष्ट उत्कृष्ट हुआ है, और आदेश उत्कृष्ट। यह इसी चर्चा पहले भी हम पढ़ चुके हैं। उनमें से समस्त विकल्पों का संग्रह करने वाला ओग उत्कृष्ट स्वामित्व है और विवक्षित विकल्प से अधिक आदेश उत्कृष्ट स्वामित्व है। देखो, ओग यानी सामान्य से होता है ना, तो समस्त विकल्पों को जिसमें संग्रह है उसको ओग उत्कृष्ट कहेंगे, और विवक्षित विकल्प की अपेक्षा आदेश उत्कृष्ट कहेंगे। अनुत्कृष्ट और आदेश उत्कृष्ट इन दोनों का एक अर्थ है, इसी कारण उत्कृष्ट ऐसा कहने पर इन दोनों उत्कृष्टों का ग्रहण हो जाता है। क्या कहते हैं? आदेश उत्कृष्ट का किसे कहा? विशिष्ट विकल्प के, विशिष्ट अनुभाग वाला जो है उसको हम आदेश उत्कृष्ट कहें, उसी को उत्कृष्ट की अपेक्षा हम अनुत्कृष्ट भी कहेंगे, इसलिए उनका दोनों का अर्थ एक ही कहा। तो जब उत्कृष्ट की स्वामित्व की बात है तो इसकी भी हो जाएगी। जघन्य भी दो प्रकार का है, ओघ जघन्य और आदेश जघन्य। जिससे नीचा नीचे और कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता वह ओघ जघन्य स्वामित्व है, वो जघन्य हुआ है, जघन्य करना। ओघ जघन्य का अर्थ है सबसे कम वाला, मिनिमम। विवक्षित विकल्प से एक विकल्प आदि से हीन आदेश जघन्य स्वामित्व है। अब जैसे कोई हम विशिष्ट विकल्प की बात करते कि अमुक इतना अविभाग प्रतिच्छेद है x, उससे दूसरा कोई हीन होगा तो उसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद कम होगा या 10 कोई होगा या कुछ हो गया, अनंत कम हो गया, तो उससे अपेक्षा वो हीन है तो उसको भी जघन्य कहेंगे, उसको आदेश जघन्य कहेंगे। तो जब जघन्य स्वामी और उत्कृष्ट स्वामित्व की बात करेंगे तो इन सब की चर्चा करेंगे। इसलिए स्वामित्व दो ही प्रकार का है, चार प्रकार का नहीं है। इसलिए जहां जहां स्वामित्व दो प्रकार का कहा गया है वहां वहां इसी प्रकार दो भेदों का समर्थन करना चाहिए, यानी ओघ और आदेश की अपेक्षा। यानी उत्कृष्ट में तो सर्वोत्कृष्ट वो एक है और आदेश उत्कृष्ट यानी विशिष्ट विकल्प के नीचे वाला उससे या उसके ऊपर वाला उत्कृष्ट है, उससे अन्य से उत्कृष्ट है इसलिए उसको भी उत्कृष्ट कहेंगे। सामित्तेन उक्कस्य पदे नाना वर्णीय व्ययेन भावदो उक्कस्य कस्य। अभी यहां से वो किसके होती है ये प्रश्न चलेगा, ज्ञानावरणी की वेदना भाव से सर्वोत्कृष्ट किसके होगी। देखो प्रश्न नीचे हिंदी में, स्वामित्व की अपेक्षा उत्कृष्ट पद में भाव से ज्ञानावरणी की उत्कृष्ट वेदना किसके होती है। अब ये प्रश्न पर भी उहापोह चलेगा, ऐसा प्रश्न क्यों पूछा, शंका। सामित्तेन इस प्रकार यहां तृतीय विभक्ति कैसे संभव है, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि लक्षण में भी तृतीय विभक्ति का विधान किया जाता है। सूत्र में उत्कृष्ट पद के निर्देश द्वारा जघन्य पद का प्रतिषेध किया है, यानी इस सूत्र में उत्कृष्ट पद का प्रश्न पूछा है, जघन्य का नहीं। शेष कर्मों का प्रतिषेध करने के लिए ज्ञानावरणीय पद का निर्देश किया है तो इसमें तो ज्ञानावरण की बात होगी, अन्य की नहीं। भाव पद के निर्देश का फल द्रव्यादि का प्रतिषेध करना है क्योंकि भाव से किसको उत्कृष्ट होती का अर्थ होता है, अनुभाग किसका ज्यादा है। यह प्रदेश यानी परमाणु किसके ज्यादा है नहीं पूछा, काल किसका अधिक बंधा है उसको नहीं पूछा है, ये भाव की ही बात चलेगी, इसलिए सूत्र में उसके भाव शब्द आया। यहाँ पर किसके होती है ऐसा कहने पर क्या नारकी के, तिर्यंच के, मनुष्य के, देव के, एकेंद्रिय के, द्विंद्रिय के, तीनद्रिय के अथवा चतुरिंद्रिय के होती है, ऐसी पृच्छा अथवा आशंका प्रकट की गई है। किसके होती है पूछा ना, तो इसका स्वामी कौन जीव है ये बात यहाँ पूछा था। अब कहेंगे वो कौन सा इसमें का स्वामी हो सकता है, भाव की अपेक्षा चल रही है, ज्ञानावरण के उत्कृष्ट भाव यानी तीव्र अनुभाग वाला किसके होगा। अन्नदरेण पंचेन्द्रियेण, देखो इसमें भी वो पंचेन्द्रिय सर्वोत्कृष्ट है ना, अब सुनो सुनो, कौन बांधेगा ज्यादा, हाँ उसी की बात चल रही। अन्नदरेण पंचेन्द्रियेण सन्निमिच्छा इट्ठिना सव्वाही पज्जत्ति ही पज्जत्त गदेन सागार उवजोगेन, साकार उपयोग वाला लिया, जागारेण जागृत नियमा उक्कस संकिलिट्ठेन बंधल्लयम जस्स तम संतकम्मम अत्थि। अन्यतर पंचेन्द्रिय, अन्यतर इसलिए लिखा कि कोई भी, एनी बड़ी एनी वन, पर कौन सा पंचेन्द्रिय संगी मिथ्या दृष्टि वो आगे उसकी तो है, परंतु किसी विशिष्ट गति का ऐसा नहीं कहा, तो अन्यतर पंचेंद्रिय संगी मिथ्या दृष्टि सब पर्याप्तियों से पर्याप्त अवस्था को प्राप्त साकार उपयोग युक्त जागृत वो जागृत हुआ है, जागृत करना उसको हिंदी में तो जागृत भी लिखता है पर जागृत करो तो अच्छा है। और नियम से उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त जिस जीव के द्वारा बंद होता है, बंद की बात चल रही है ना, बंद होता है और जिस जीव के इसका सत्व होता है उसको भी लिया, बंद करेगा उसका सत्व भी हो जाएगा। यह सूत्र उत्कृष्ट अनुभाग को बांधने वाले जीव का लक्षण बतलाता है, बांधने की बात है। उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त अभी जब हम कहते हैं तो जो वहां से जाके केंद्रियों में जन्मता है, देखेंगे कुछ लिखा है तो हो सकता है। अब ये आगे इसकी चर्चा करेंगे। विकलेंद्रिय उत्कृष्ट अनुभाग को नहीं बांधते किंतु पंचेंद्रिय ही बांधते हैं। इस बात के ज्ञापनार्थ सूत्र में पंचेंद्रिय पद का निर्देश किया गया है। वेद कोई भी क्यों कहा तो वो स्त्री है कि पुरुष है उसकी बात नहीं है। हाँ, अन्यतर कह रहे कोई भी का अर्थ होता है उसमें स्त्री पुरुष का भेद वो उसमें नहीं लेना। अभी वही बात चर्चा चल रही अभी नीचे है ना अंतिम लाइन में क्या लिखा, वेद स्त्री है कि पुरुष है कि नपुंसक। हाँ वो सब बताएंगे अभी। तो वेदों का डिफरेंस नहीं है। अवगाहना एवं गति, गति भी बताए, चारों ही गति के जीव इसको बांध सकते हैं। यानी अन्यतर क्यों कहा, एनी बड़ी किसमें से, किस कोई भी वेद वाला हो, कितनी भी बड़ी छोटी अवगाहना वाला हो। पंचेंद्रिय को लिया है ना हमने, तो पंचेंद्रिय में किसी छोटी अवगाहना वाला पंचेंद्रिय कोई बड़ी अवगाहना वाला होगा, कोई महामत्स्य होगा, कोई वो चूहा होगा, पंचेंद्रिय है संगी पंचेंद्रिय। तो कहते अवगाहना एवं गति आदि की विशेषता का अभाव, यानी उसमें कोई डिफरेंशिएट किए बिना ये बड़ा होगा इसलिए ज्यादा संकलेश, ऐसी कोई बात नहीं है। बतलाने के लिए अन्यतर पद दिया गया है। आपका प्रश्न था ना अन्यतर क्यों लिखा, तो संगी क्यों लिखा, तो असंगी का प्रतिषेध करने के लिए संगी पद का निर्देश किया गया है। तो मिथ्या दृष्टि क्यों लिखा, सासादन आदि का प्रतिषेध करने के लिए मिथ्या दृष्टि पद का ग्रहण किया है, क्योंकि सासादन आदि आगे चले जाते हैं तो उसका अनुभाग भी इतना नहीं बंधेगा जितना मिथ्या दृष्टि संकलेश वाला बांधेगा। जैसे वहां हमने देखा स्थिति भी अंत कोड़ा कोड़ी की बांधेगा आगे के जीव, वैसे अनुभाग को बांधने वाला भी कम अनुभाग को बांधेगा। अपर्याप्त काल में उत्कृष्ट अनुभाग का बंध नहीं होता किंतु पर्याप्त काल में ही उसका बंध होता है। इस बात के ज्ञापनार्थ सब पर्याप्तियों से पर्याप्त अवस्था को प्राप्त ऐसा कहा है। दर्शनोपयोग के काल में उत्कृष्ट अनुभाग का बंध नहीं होता किंतु ज्ञानोपयोग के काल में ही होता है, यह बतलाने के लिए साकार पद का निर्देश किया गया है। सुप्त अवस्था में उत्कृष्ट अनुभाग का बंध नहीं होता किंतु जागृत अवस्था में ही होता है, यह बतलाने के लिए जागार पद का निर्देश किया गया है। मंद मंदतर मंदतम तीव्र तीव्रतर और तीव्रतम भेद से छह संकलेश स्थानों में से छठे संकलेश स्थान में वह उत्कृष्ट अनुभाग बांधता है। ये संकलेश के ये भेद किए उन्होंने छह, उसमें जो तीव्रतम संकलेश है इसको छठा स्थान कहा, उसमें वो उत्कृष्ट अनुभाग को बांधता है, यह बतलाने के लिए उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त ऐसा कहा गया है। वह एक प्रकार का नहीं है क्योंकि यहां आदेश उत्कृष्ट और ओग उत्कृष्ट इन दोनों ही ग्रहण है, दोनों का ही ग्रहण है। यानी विवक्षित के कोई विवक्षित अनुभव है उससे जो उत्कृष्ट होगा उसको भी उत्कृष्ट कहेंगे, या जो सबसे उत्कृष्ट है उसको भी उत्कृष्ट कहेंगे। सूत्र में आया हुआ नियमापद चूंकि मध्य दीपक है, अतः नियम से पंचेंद्रिय, नियम से संगी, ये नियमा बीच में ही डाला ना, देखो हमको मध्य दीपक ज्यादा मिलते नहीं है, यहाँ क्या लिखा है हिंदी में, देखो हिंदी में क्या लिखा, अन्यतर पंचेंद्रिय संगी मिथ्यादृष्टि सब पर्याप्तियों से पर्याप्त अवस्था को प्राप्त साकार उपयोगयुक्त जागृत और नियम से उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त जिस जीव के द्वारा, ये आखिर में लिया नियमा उपकृष्ट संकलेट है, तो बीच में सूत्र के बीच में आए ना शब्द, तो ये सबके पहले वाले को भी बाद वाले को भी। तो नियमापद चूंकि मध्य दीपक है, अतः नियम से पंचेंद्रिय, नियम से संगी एवं मिथ्यादृष्टि, नियम से सब पर्याप्तियों द्वारा पर्याप्त अवस्था को प्राप्त, नियम से साकार उपयोग से संयुक्त, नियम से जागृत तथा नियम से उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त, ऐसा कहना चाहिए। उपर्युक्त विशेषणों से संयुक्त जीव के द्वारा बांधे गए उत्कृष्ट अनुभाग का सत्व जिस जीव के होता है उसके ज्ञानावरणीय वेदना भाव की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है, यह उक्त कथन का अभिप्राय है। यानी वो तीव्र अनुभाग को बांधता है, यानी तीव्र अनुभाग बांधने वाला भी वो संगी मिथ्या दृष्टि पंचेंद्रिय ऐसा लिया ना, अभी हमने सारी कंडीशंस देखी उसकी, अब आगे बढ़ते हैं। तम ए इंद्रिय सेवा, बी इंद्रिय सेवा, ती इंद्रिय सेवा, चौर इंद्रिय सेवा, पंचेंद्रिय वा सन्निस्स वा असन्निस्स वा बादरस्स वा सोमस्स वा पज्जतस्स वा अपज्जतस्स वा अन्नदरस्स जीवस्स अन्नदवीयाय गदीये वट्टमानस्स तस्स नानावर्णीय वेयना भावदो उक्कस्स। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। ऐसे जिसने बांधा है वो अन्य अन्य अलग अलग बहुत सारे वेरिएशन उन्होंने बता दिए, कोई पर्याप्त हुआ कहीं अपर्याप्त हुआ कहीं केंद्रीय द्विंद्रिय तिंद्रिय में चला गया, तो उसके सत्ता की अपेक्षा वो उत्कृष्ट होगा, क्योंकि वो पहले में बांधने वाला कौन उत्कृष्ट है उसको बताया। अब एक बार बांधा तो अंदर पड़ा है, तो वो एकेंद्रिय में गया तो क्या होगा उसका, वो उत्कृष्ट हुआ अनुभाग उत्कृष्ट है ना उसका, सत्ता में पड़ा है उसको, वो पढ़ेंगे। देखो उसका सत्व लिखा भी, पहले बंद की बात की थी, वो आठवें सूत्र में बंधल्लयम और संतकम्मम दोनों लिया था। संतकम्म है ना सत्व, कर्म का सत्व, बंध होता है और सत्व होता है, इसे बताया था। अभी दूसरे सूत्र में खास उसकी और स्पष्टीकरण बताते हैं। देखो अभी इसका जो हमने सूत्र पढ़ा उसका अर्थ देखते हैं। उसका सत्व, किसका सत्व, हाँ ज्ञानावरणी का जो अभी तीव्र अनुभाग उत्कृष्ट अनुभाग वाला जो अभी हमने देखा था ना, भाव से उत्कृष्ट, उसका सत्व, सत्व ने सत्ता में पड़ा है अभी, उसको सत्व कहते हैं। एकेंद्रिय अथवा द्विंद्रिय अथवा तीनद्रिय अथवा वा करना चतुरिंद्रिय अथवा पंचेंद्रिय अथवा संगी अथवा असंगी अथवा बादर अथवा सूक्ष्म अथवा पर्याप्त अथवा अपर्याप्त, ये संगी पंचेंद्रिय मरकर कहीं भी जा सकता है। अभी जो यथायोग्य जहां जाएगा उसको समझना, क्योंकि देवनार के द्विंद्रिय तिंद्रिय में नहीं जाएंगे, एक नार के एक नार की तो पंचेंद्रिय में ही जाएगी और देव तो एक इंद्रिय में भी जा सकते हैं। बंद होने में तो चारों गति को लिए थे, परंतु सत्ता में जहां जाएगा वो, तो सूक्ष्म अथवा पर्याप्त अथवा अपर्याप्त अन्यतर जीव के अन्यतम गति में विद्यमान होने पर होता है, अतएव उक्त जीव के ज्ञानावरणी के वेदना भाव की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है। सत्व की बात की नहीं यहाँ पर, हाँ जीव समाज सभी ले लिए। वह सत्कर्म सूत्र में कही गई एकेंद्रिय से लेकर अपर्याप्त अवस्था तक, ये यहाँ सूत्र में जिस क्रम से बताया ना, एक केंद्रीय से लिया है, उसके पर्याप्त भी लिया और अपर्याप्त भी लिया, अवस्था तक सब अवस्था विशेषों में पाया जाता है शंका। अन्यत्र बांधे गए उत्कृष्ट अनुभाग की दूसरी जगह संभावना कैसे हो सकती है? तो उसने बांधा था अन्य गति में, तो उसका सत्ता कैसे रहेगी? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग को बांधकर उसका कांडक घात किए बिना अंतर्मूर्त काल के भीतर एकेंद्रियों में उत्पन्न हुए जीवों के उत्कृष्ट अनुभाग का सत्व पाया जाता है। यानी वो बंद के बाद उसका कुछ नहीं, उसमें वेरिएशन हुआ और वो एकेंद्रियों में चला गया, उसकी बात है। इस प्रकार इन अवस्था विशेषों में वर्तमान जीव के ज्ञानावरणीय वेदना भाव से उत्कृष्ट होती है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। शंका, यहाँ उपसंहार का कथन क्यों नहीं करते हैं? उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो शिष्य स्थान स्पर्धक वर्गणा और अविभाग प्रतिच्छेद के विषय में निपुण नहीं है, उसे उपसंहारक कथन करने पर व्यामोह न हो, इस कारण यहाँ उपसंहारक कथन नहीं किया जाता है। यानी अभी जो शिष्य मालूम नहीं स्थान स्पर्धक वगैरह क्या है, तो अभी ये खत्म कर दें यहाँ पर, तो वो तो ऐसा ही रहेगा कंफ्यूज्ड, तो वो आगे चलकर बताएंगे जाके। तब व्यतिरिक्तम अनुकस्सा, उससे भिन्न अनुत्कृष्ट भाव वेदना होती है। उससे अर्थात उत्कृष्ट अनुभाग से भिन्न जो वेदना है, वह तद व्यतिरिक्त, तद व्यतिरिक्त है उसके अलावा कहलाती है, और वह अनुत्कृष्ट भाव वेदना है। सत्ता की अलग बात है, उदय की अलग बात है। अभी सत्ता में किसी का अजगण्य भी हो और उदय रूप, वो उदय रूप में आएगा जगन्य वाला, यहाँ बंधे और सत्ता की बात चल रही ना। आप जो कहते हैं कि ज्ञान का उगर जगन्य भी हो सकता है, तो उदय रूप निषेकों की अपेक्षा से होगा। उदय में आवरण ज्यादा वाला आवरण का उदय है, तो ज्ञान अत्यंत हीन है वहां, तो भाव उत्कृष्ट लेना उदय वाला, उदय की बात चल रही है ना। हाँ, देखो अभी 10 नंबर का। तब अतिरिक्तम अनुकस्सा, उससे अर्थात उत्कृष्ट अनुभाग से भिन्न जो वेदना है, वह तद व्यतिरिक्त कहलाती है, और वह अनुत्कृष्ट भाव वेदना है। शंका, यहाँ अनुत्कृष्ट स्थानों की पृथक पृथक प्ररूपना क्यों नहीं करते? समाधान, नहीं, क्योंकि आगे अनुभाग चुलिका में अनुभाग स्थानों का कथन करेंगे ही, फिर भी यहाँ उनका कथन करने पर चूंकि पुनरुक्त दोष आता है, अतः उनका कथन नहीं किया है। यहीं पर रुकते अभी हम, यानी वो अनुभाग के अलग अलग जो स्थान है ना, इतने इतने अनुभाग वाले, वो सारे डिटेल में आने वाले हैं, बाद में उसका कथन करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तकन वो सदा देत हो नो। वही भाई।